हरे कृष्ण। तो आज हमारे वैष्णव पंचिका के अनुसार एक महान तिथि है, जिन तिथि पे दो महान वैष्णव आचार्य का भगवत किला गमन हुआ था, किला प्रवेश हुआ था। तो आज के इस पावन तिथि में जितना संभव हो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम जानते हैं सारे शास्त्रों में और संत महंत भी ऐसे ही कहते हैं कि भगवान भी स्वयं कहते हैं कि हरि से हरि के भक्त अधिक है, मद भक्त पूजा अधिक है। जब भगवान श्री पार्वती को कहते हैं पार्वती के प्रश्न पर आराधना के बारे में, आराधना सर्वेशां विष्णु आराधना परम, जितने प्रकार की उपासना पूजा आराधना है सबसे श्रेष्ठ है विष्णु के आराधना। देवी उससे भी बढ़कर हो रही है, उससे भी बढ़कर है क्या? तस्मात परतरं देवी तदीनं समार्चना, जो उनके है उनका पूजा उनसे भी बढ़कर है। ऐसा तो भागवत में अनेक स्थान में कहा गया, श्री हरि अजित है, स्वराट है, स्वतंत्र है, उनको किसी प्रकार से किसी शक्ति के द्वारा कोई कभी जीत नहीं सकता। ऐसे अजीत परमेश्वर भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे प्रेमी भक्त के द्वारा जीते जाता हूं। अभी आप लोग के ऊपर है कि आप तो हारे हुए भगवान के शरण में जाएंगे या जीते हुए भगवान के भक्त के शरण में जाएंगे, आपके ऊपर है। अगर आप उस भक्त के शरण में जाते हैं, भगवान की भजन करना शरण में जाना तो भक्ति है ही, लेकिन अगर उनको छोड़ करके उनके भक्त के शरण में जाते हैं तो भी भक्ति अति सरल और सुगम हो जाएगा और भगवत धाम तो सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे शास्त्र वचन है, सिद्धि भवतीवान यदि संशय अच्युत से बिना असंशयम तो तद भक्ता परिचर्यात्मना। कहते हैं कि सिद्धि भवतीवान यदि आप जो साधन भजन तप आदि व्रत आदि करते हैं इसके द्वारा आपका सफलता या सिद्धि होगा या नहीं होगा इसमें का संशय है। प्रकार भजन कैसा अगर मेरा भजन नहीं साक्षात अच्युत भगवान का एक आक्रमण से भजन सेवा कर रहे हैं तो सिद्धि भक्तिवान यदि संशय किसके ऊपर? अच्युत से बिना। अच्युत भगवान श्री हरि को कहा जाता है जो कभी भी अपना पोजीशन से नीचे उतरते नहीं, चुपते नहीं। अच्युत भगवान हमेशा अपने स्थिति में रहते हैं। ऐसे श्री हरि अच्युत के सेवा में जो तन मन धन से जुड़े हुए हैं उनका श्रम उनके सेवा उनके साधना सफल होगा सिद्धि प्राप्त करेंगे इसमें मेरा बड़ा संशय है। सिद्धि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सिद्धि भवती वाले जो अच्छे से सीखना। लेकिन दूसरे में कहते हैं असंशय, इसमें तो कोई संशय का सवाल ही नहीं होगा, 100% गारंटेड उनका सिद्धि तो होकर ही रहेगा। किसका असंशय? तो तद भक्ता जो उन अच्युत गुण हरि का जो भगत है उनके सेवा में जो रत है परिचर्यारत आत्मना, उन भक्तों की सेवा में जो अपने आप नियोजित किए हैं उनका सिद्धि में तो सवाल ही नहीं उठता, कोई डाउट का 100% गारंटी ये शास्त्र वचन। तो ये सब को देख करके सुन करके समझ करके लगता है कि काहे की हरि पीछे पड़े, जो अनंत है हमारे बस में ही नहीं सकता है गोचर। उन कहा जाता है कि वो अदक्ष है, हमारे इंद्रिय के अंदर तो आ ही नहीं सकते, ने चलो तुम्हारा क्या जमीन है अभी क्वालिफाइड तो सब नहीं हम क्या योग्यता रखते हैं भगवान को सेवा करने के लिए ना हमारे पास योग्यता है ना हमको आवश्यकता है हम कभी कभी सोचते हैं हम सेवा करने के ठाकुर के योग्य है अरे मूर्ख भगवती लक्ष्मी वो कहती है ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सभ्यमान सतसंभ्रम भाव से बिल्कुल सेवा भाव लेकर संभ्रम चित्त से सहस्र सहस्र भाग्य की देवी लक्ष्मी लाइन में खड़ी है कोई हाथ में झाड़ू लेकर कोई पोछा लेकर कोई माला लेकर के उनको चांस ही नहीं मिला नहीं सेवा के राम कौन सा गाय के गोबर है सेवा करने की क्या है नहीं किसी प्रकार से हमारा सेवा की योग्यता बिल्कुल रही नहीं और उनको सेवा की आवश्यकता भी नहीं और सेवा बन गया तब ठाकुर जी कहते हैं मेरा सेवा तो कर नहीं सकता लेकिन हम सेवा कर सकते हैं किसका जिसको सेवा का आवश्यकता है और जिसको सेवा करने के हम लायक भी है वो कौन ना हमारे जैसे कोई हो हमारे जैसे कोई ऐसे ही शरीर वाले ऐसे मनुष्य कोई हो उन बिचारों को हर प्रकार से कई तबीयत खराब होता है कितने प्रकार के परेशानी पड़ता है जरूरत पड़ता है उनको सेवा का हेल्प का जरूरत है और हम उनके सेवा का हेल्प करने के लिए लायक भी है लेकिन किनको अगर इनमें से कोई जिनकी सेवा का आवश्यकता है इनमें किसी को आप चुन लिए जो उन हरि का हो चुके हैं जो उन हरि के निज जन है इनमें से किन को चुन कर उनके सेवा करो तो काम नहीं है बस दैट्स इट और कुछ आवश्यकता नहीं तो इसीलिए जो वास्तविक बुद्धिमान भक्त वो तो फिर उनके पीछे नहीं पड़ेंगे वो तो किसके पीछे पड़ेंगे तो इसलिए आज ऐसे एक महान प्रेमी भक्त आचार्य के तिरुभाव है दोनों के बारे में शायद होगा नहीं तो एक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं श्री रघुनंदन भागवत महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में कहा गया है जब महाप्रभु अपने शाखा वर्णन करते हैं शाखा गणन होता है प्रेम मुख्य का शाखा गणन इसमें कहते कहते कविराज गोस्वामी कहते हैं कि खंडवासी रघुनंदन मुकुंद खंडवासी मुकुंद रघुनंदन और नरहरि चिरंजीव सुलोचन पांच नाम गिनाए सही ये खंडवासी हैं वो कैसे हैं ना उनका अंदर इतने कृष्ण प्रेम भरा है और जिसको मर्जी तिसकी जैसे फूल से बांटने से बांट सकते कृष्ण को जहां मर्जी जहां बांट सकते ये उनका क्षमता है पांच नाम का इन पांच नाम वाले जो व्यक्ति हैं जो खंड सिखंड में रहते हैं खंडवासी भक्त उनका इतने क्षमता है और कृष्ण प्रेम को जैसे इसे उठा के यूं देंगे जिसको मर्जी ये उनका सामर्थ्य है उनका क्षमता और कौन कौन है जिस सामर्थ्य मान पड़ती बोलते हैं एक मुकुंद दूसरा अभिनंदन तीसरा नरहरि और चिरंजीव के सुलोचन ये सिखाने लगे उनमें से एक ही परिवार के तीन है जो सबसे पहले नाम के लिए गिनाया जाता मुकुंद अभिनंदन नरहरि एक ही परिवार के तीनों और क्या संबंध है परिवार में मुकुंद और नरहरि दोनों भाई हैं और मुकुंद के पुत्र है अभिनंदन इसका नाम भी करोगे जिनका तिरुभाव दोनों ही गोरखनाथ तो प्राण भक्त थे दोनों भाई मन में चित्त में हृदय में गोरख के अलावा कुछ था ही नहीं शरीर धर्म चलाने के लिए शरीर को आवश्यकता है काम काम को सकता है तो इसके लिए मुकुंद जी बड़े भाई हैं उनके पितृ पितामह से आया था कविराज जी के काम कविराज मतलब वैद्य है अच्छे वैद्य थे उन्होंने वैद्य परिवार के हैं तो वैद्यगिरी करते थे डॉक्टर सिद्ध करते थे और कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं थे उस समय का पूरे अंग भंग कलिंग उनके जो राजा नवाब हुसैन साहब था उनके राजवैद्य थे रॉयल डॉक्टर थे दिन अंदर स्पेशल राजा का तो देखा पर खैर एक बात तो हो जाती है मुख्य राज होते हो और उनके छोटे भाई नर है बड़े शक्ति बुद्धि सामर्थ्य रखते हुए भी वो कुछ नहीं करते थे और घर में रहकर के भक्त संग करना भक्त चर्चा करना कथा करना इसमें रहते थे घर बड़े संभालते थे वो घर में नहीं रहते ज्यादा समय बाहर में रहना पड़ता था टूर में बड़े घर में घूमने को लेकिन दोनों ही भाई चाहे कहीं घर में रहे चाहे बाहर में रहे चाहे कुछ भी करे इसमें शिक्षा लेना था हम कहते हैं कि बनता नहीं राबरी में नहीं हो पाता घर में रहने से भक्ति कर लेता हूं घर में भी अगर मंदिर में रहूं तो मैं अच्छे से कर सकता अगर मंदिर में रहेगा तुम क्या करेगा तुझे कराया जाएगा तेरे मुद्दे को तू क्या करेगा तुझे घंटी बजा कर जबरदस्ती उठा कर लाएंगे तो खाना बंद कर देंगे तेरा तेरा बहादुर क्या मंदिर में जो ब्रह्मचारी है वो कभी नींद नहीं आ सकते भक्ति करने तुम्हें से कराया जाता है ये तुम्हारा बहादुर नहीं है जो गृहस्थ भक्त है बेचारा को उठाने को वो जो उत्तर आता है इस बेटा और जो घर में भी नहीं मंदिर भी नहीं बाहर टूर में और कोई काम है किसका अंडर घूमता रहता है वो अगर भक्ति करे तो उसको माना जाएगा कि वो कर रहा को कर रहा बाकी उनको कराया जा रहा इसमें उनका कोई बात नहीं तो मुकुंद जी इतने बड़े राष्ट्र के राजवैद्य थे और कितने टूर होता था कई बार राजा रानी उनका सब राजपार्षदों का सब बड़ी चेकअप करना ये करना घूमना कई प्रकार का नामा दवाई पानी बनाना कुछ सब करना इसमें रहते हुए भी ऐसे भगवान में उनका मन लगा हुआ था एक बार की ऐसी घटना था कि नवाब हुसैन शाह बैठे हैं तो उनको बड़ी चेकिंग करने के लिए वैद्य को बुला गया
क्यों
क्योंकि मैं मेरा अंश रूप में आपके पुत्र बनकर आऊंगा, मेरा इच्छा है। शादी नहीं करते तो मैं लड़का कैसे बनूंगा बताओ? एडवांस बुकिंग कर दिए भगवान ने, तुम्हारा पुत्र मैं बनूंगा, एडवांस बुकिंग हो गया। अब शादी नहीं क्या होगी, शादी करना पड़ेगा किसने? कौन बता रहा है किसको? अरे पुत्र बता रहा है पिता को, पुत्र बनेंगे ना। अब कौन बड़ा है? पुत्र बड़ा ना, पुत्र पहले ना पिता पहले, बताओ? पिता तो बने नहीं, पिता जब बनेंगे कोई बेटा बनेगा तब तो बाप बोलेगा ना, दूसरे कोई अपने मन में लोग बाप बोले नहीं। अभी बेटा बोलता है कि तुम पहले शादी करो, मैं बेटा बनूंगा फिर पिता बनूंगा, तो इसलिए शादी करो। तो बोला मुझे कौन शादी करेगा, कहाँ ढूंढने जाऊंगा, कोई है ना, कोई चिंता नहीं, आप जाओ घर में सब हो जाएगा। अब जैसे उन्होंने पुलिस के घर में आए तो लड़की वाले ढूंढ रहे थे, उनके एड्रेस लेकर के उनकी प्रेरणा से वो शादी करवा दी उनको। जैसे भी हो तो उन्हीं के पुत्र रत्न के रूप में श्री रघुनंदन आए, मुकुंद पुत्र के पुत्र श्री रघुनंदन। पिता जैसा है जो पहले से आडवांस बुकिंग हो चुका है पुत्र बनकर, कौन आएगा सिवाय? अब जन्म से ही तो स्वयं भगवत शक्ति भगवान के अंश में कामदेव स्वयं आए थे, प्रद्युम्न जी थे वो, रघुनंदन प्रद्युम्न थे, मदन थे वो। तो जब बिल्कुल शैशव अवस्था था, ऐसे हम जानते हैं समाज में साधारण नीति के अनुसार बालावस्था क्रीड़ा सकता, बालक तो में सब खेल कूद में धुन मचाते हैं ना, खेलते खेलते भूल जाते हैं खाना पीना भी, नाना प्रकार के संग साथी के साथ खेल कूद करते, बालावस्था क्रीड़ा सकता। तरुणावस्था जो युवक अवस्था आता है तो युवती रखता, तो लड़के पीछे भागते, और उसके बाद वृद्धावस्था चिंता, आप टेंशन में भर पड़ेंगे। ये तीन अवस्था तीन प्रकार की स्थिति प्राप्त हो रहा है। तो अभी बालक अवस्था में जो स्वभाव सुलभ से उनको खेल कूद करना चाहिए, रघुनंदन साथियों के साथ जाकर खेल कूद नहीं करते, उनका रुचि नहीं था उसमें, उनका रुचि किसमें था? जब उनके पिताजी कभी घर में आते हैं या चाचा जी घर में, जो ठाकुर जी हैं उनको सेवा करते हैं, वो बैठ करके छोटा बच्चा है बैठ करके देखता है, कैसी सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं, माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन भोग लगाने से बड़ा बंद करते थे, कोई देख नहीं पाते, वो दर्शन है कोई पता नहीं, भोग लगाना बंद है देख नहीं पाए, बाकी सब श्रृंगार भंगार से दर्शन करते हैं, बाकी खाने पीने से बंद करते थे, वही सेवा देख नहीं पाते, बाकी सेवा सब बराबर डेली बैठ कर देखता, सुबह सुबह उठा संतन किया मत निवर्तन तो ठाकुर बाड़ी में चले जाएगा, चाहे पिताजी हो नहीं तो चाचा जी दोनों से कोई ना कोई ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सेवा का समय पूरा ध्यान लगाकर देखता था कि कैसे सेवा करते हैं बराबर। देखते देखते उम्र उनका लगभग 3.5-4-5 साल के आसपास होने लगा, अभी केजी में एडमिशन कब करा, 3-5 साल अब एडमिशन नहीं हुआ था उनका, वो केवल बराबर जाकर के जाहिर देखता था। तब एक दिन उनके पिताजी घर में आए थे, चाचा जी कहीं गए थे, तो पिताजी की पूजा कर रहे थे, वो देख रहा था मैं खुश था। तो एक दिन पिताजी को कुछ इमरजेंसी कॉल आया, पिताजी को जाना पड़ा, दूसरे दिन आएंगे, तो बोलेंगे चाचा जी घर में नहीं है, दादाजी जी नहीं है, मैं जाऊँगा, लेकिन नित्य सेवा विग्रह मेरा घर में है, उनकी सेवा तो कौन करेगा, हम दो ही भाई तो है। तो बोले क्या पत्नी की बोलो कर दिलाऊ, ठीक नहीं है ये सब, हम सब आगे काम करेगी, किसको बोलूं किसको कह जाऊं। तो मन में सोचे तो पीछे मुड़कर देखे तो बेटा बैठा बड़े ध्यान से, वो भी लक्ष्य किया कि प्रतिदिन पूजा के समय ना खेल कूद में जाता है कहीं नहीं, बैठ करके बिल्कुल समाधि लगा कर देख रहा है। तो बोले बेटा रघु नबीता जी देखो मेरे को इमरजेंसी कल आया है, खबर आया तो जाना पड़ेगा, हो सकता है मैं आते आते काल हो जाएगा, कल तक आ पाऊंगा तो ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे कर लेगा। और तो नाच पड़ा, हाथ उठाकर नाचने लगा कि मुझे आज सेवा का सौभाग्य मिल। मेरे रहा। पिताजी ने बोले कि मुझे आज सेवा करेगा। हाथ खाली देकर के नाचने लगा, पिताजी के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। पिताजी बोले इतने उत्साह उनका, इतने उमंग है, इतना खुश हो रहा है, तो हमको सेवा अवश्य करना चाहिए। मेरे अंदर तो इतने उत्साह नहीं, तो ड्यूटी हुआ वो तो इतने आनंद हो रहा है, सेवा का सुख मिल रहा है। बाकी हम किसी बोलेंगे तो ना आती कब लेकिन वो तो इतना आनंद हो रहा है छोटा बालक। तो पिताजी ने बोले बेटा मैं पूरा जानता हूँ, डेली में देख रहा हूँ, बिल्कुल हूबहू करूंगा सेवा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो पिताजी ने विश्वास किए बेटा को, जानते हैं कि बेटा का कौन, और ये भी जानते हैं कि बेटा कौन है। तो चले गए उन्होंने, वो पत्नी की बोल के देखो दे दो ना, बोल कर गया बेटा कर लेगा तू जा, ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो जैसे पिताजी चले गए, उनको टाटा बाबा करके सुबह आ गए, आकर के स्नान दान करके जैसे तिलक तिलक पिताजी करते ऐसे करके बिल्कुल बाबा से आसमान करके आसन शुद्धि करके पूरा देखता था ना, कई दिन से नजर रखा था हूँ सारे, जैसे वैसे किया कर कर करके ठाकुर जी के अल्टर पास आकर बैठ गया। माता जी तो कहीं घर भले जमाने में इसे नियम होता था कि आजकल ऐसे घर के साथ ठाकुर जी अटैच करके कर देते हैं, बात उनके साथ ये उनके साथ ये उनके साथ बैठ उनके साथ, ऐसे नहीं होता था, नियम होता था पहले गाँव में जहाँ घर ठाकुर जी का घर थोड़े अलग होगा ना, इसमें हम लोग आना जाना सोना खाना कहीं नहीं हो सकता, ठाकुर जी के ठाकुर जी हमारा इसने तो उनका अलग ठाकुर बड़े होते हैं उसमें ठाकुर घर अलग हुआ करता हटा से नहीं हुआ करता। तो ठाकुर बड़े चले गए, माँ तो घर के काम कर रही है। तो जा करके ठाकुर बाड़ी में बैठ करके जैसे जैसे वो देख रहे थे सीख रहे थे प्रतिदिन का भाती, और ठाकुर जी को लाए बड़े प्रेम से प्यार से उनको नहलाए, नहला करके उनको पोछा लगाए, वस्त्र पहनाए, चंदन और सब लगाए, पुष्प माला पहनाए, श्रृंगार किए, सब करके रेडी करके बैठा। यहाँ तक तो सब सीखे थे देखे थे सब कर लिए, जहाँ तक देखे सीखे थे और सब कर लिए। आप बोले अभी तो सब हो गया, धूप दीप गंधर्व चंदन पुष्प अभी नैवेद्य के बात है, भोग लगाना है ठाकुर जी को। तो लगा हाँ कुछ भोग है ठाकुर नाम बताया, तो उनकी माँ ने आज मेरा पहली बार मेरा बेटा भोग लगाएगा, इसलिए बड़े जतन से बड़ी सुंदर सुंदर लड्डू बनाए, सब मसाला मस्ती और काली काली डाल करके बड़े सुंदर लड्डू बना के पूरा थाला भर कर रखा दे दिया। तो बेटा ने थाला भर के चल पड़ा बेटा निकला, लेकिन लेकर रख दिया यहाँ क्या मैं देखा ही पिताजी खिलाते कैसे कौन कौन कर देते हैं इसको नहीं देखा, बाकी सब तो मैं देखा हूँ कैसे कैसे तो कर लिए, भोग कैसे लगा तो मैं देखा ही नहीं, अब क्या करूँ कैसे खिलाते हैं क्या करते हैं वो तो मैं देखा नहीं होता। तो डेली भोग लगते समय फोन कर देते, तो पता नहीं हम अंदर किसी के हाथ में क्या करते हैं। तो बैठते बैठते आधा घंटा सोचने लगा अब क्या करूं, उसके आप पिताजी भी नहीं है और इसी को हम दिखा नहीं इस पार्ट को। बोला कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा अभी तो ऐसा है, मैं भी तो खाता हूँ, वो भी खाएगा उसमें क्या बात, उसको छिपा कर खिलाते हैं, मैं भी तो खाता हूँ, मैं जैसे खाता हूँ उसको इसे खिलाऊंगा। तो बैठ कर बोले चलो देखो बुरा मत मानना, ठाकुर जी से बात करते हैं, मुझे पता नहीं तेरे पिताजी कैसे खिलाते हैं, मैं दिखा नहीं वो बंद कर देते हैं, लेकिन मैं भी तो खाता हूँ तुम इसे खाओ, खाला लेकर आकर रख दिया लिखा, वो भी पता नहीं कि तुलसी पत्ता डालना है कुछ ताला मारना है मुद्रा करना है कुछ करना है कुछ नहीं पता नहीं मुझे, सब अंदर होता था बाहर से खाने रख दिया भला, तो बोला खाओ खाओ अरे तो विग्रह है विग्रह है कुछ तो विग्रह हो किसे खाएंगे। तो बोला वो सोच रहे हैं लगता नहीं समझ नहीं पाता क्या खा रहे पिताजी, कुछ मंत्र जंत्र करते हैं मालूम नहीं, अगर समझ जाएंगे तो खाएंगे। देखो आज का लड्डू ऐसा नहीं है स्पेशल लड्डू है, माँ ने बोला देखो किस प्रकार डाला है कैसे मीठा डाला कैसे ये डाला कैसे लड्डू खाकर तो देखो बहुत पहला फुसला करके बोला बोला खा लो इतना बढ़िया बनाया ये कैसे क्या खा लो। 10-15 घंटे टेस्ट किया लेकिन फिर नहीं खा रहा, तब देखा क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, बिल्कुल खाता था, आज क्यों खा रहा। देखो तुम खा लो नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे, मुझे पता नहीं था ये कैसी बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ खा लो ना, तेरे मेरे दोस्ती है, मैं तेरे को कितना बढ़िया फूल माला बनाया, खा लेगा ना और फूल देगा तुझे, ना बढ़िया ये फूल आ गया तो खा लो, क्यों नहीं खा रहा। बोला देखो तू यदि नहीं खाएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो खा लो तो मैं कितने बढ़िया बढ़िया गीत गाऊंगा तुझे सुनाऊंगा, खाने के बाद बैठ कर खेलेंगे गीत गाएंगे, मैं बढ़िया गीत गाकर आपको सुनाऊंगा। बोला इसी तरह से खा लेगा, भी नहीं खा रहा है, कितने लोग दिखाया भी नहीं खा रहा है। तो बोला देखो जो नहीं खाएगा तेरा हमारा आशय कटी, इसी लगता ना तेरे से हमारा आशय रिश्ता टूट जाए, बात नहीं करेंगे तेरे से। इस तरह पीछे बोलता हूँ खा लो, क्यों नहीं खा रहा, नहीं खा रहा तेरे हमारे बातचीत नहीं करेंगे आगे से, क्यों नहीं खा रहा। बोला देखो मैं बोलता हूँ नहीं खा रहे, पिताजी को बोल दो ना तो मैं जा निकले ना, अरे बात नहीं मान रहा है पिता जाऊंगा मैं मिल लूंगा, तब जब बिठाई पड़ेगा तो बोलता हूँ मान लो भी खा लो। बोला सर पिताजी का धमकी देने से खा लेगा, फिर भी नहीं खा रहे, पिताजी को डर नहीं, पिताजी डरता नहीं, कैसा लगता है, डरता नहीं, हर प्रकार से घुसला करके डर दिखा कर बना कर ठाकुर जी नहीं खाया तो बालक का तो फाइनल बड़ी सी एक ही होता है बाल हट क्या रोना शुरू कर दिया, रोना ए ए करके रोना रोट करके बिल्कुल रो करके इसे रोने लगे कि क्यों नहीं खा रहा तुमने, क्या क्या होने क्यों नहीं खाया। अब रोट करके उनके सामने तो रो रो के रहने लगे तो ठाकुर लेट के ठाकुर जी को अपना धर्म छोड़ना पड़ा, अपने जड़ धर्म अपने विग्रह धर्म छोड़ करके निकल करके विग्रह से आए अल्टर से नीचे थाली के पास बैठ करके एक एक करके लड्डू खाने लगे, मुझे कुछ होना खाओ एक और खाओ एक और खाओ। ठाकुर जी ने अल्टर से विग्रह रूप से निकल करके आ करके थाला से लड्डू लेकर खाके सारे खा गए पूरे थाली खा गए, खाकर देख बैठे तो खुश हो खुश हो क्या तो तन लग रहा दिया तुम पता नहीं। अब माता जी देखा नहीं बोला रख रखा होगा पैसा, तो पिताजी ने शाम को आया बोले रघु सेवा किया बिल्कुल किया जाके देखो जाके दर्शन किए बड़ा अच्छा लगा सेवा सुना बहुत अच्छा लगा। बोले अच्छा प्रसाद लो, क्योंकि मुकुंद का एक नियम था कि जब तक भगवान की चरणामृत मुख में नहीं देंगे तब तक जल भी स्पर्श नहीं करेंगे, प्रतिदिन तो घूम घूम कर शाम तक आए लेकिन अब तक नहीं खाए, अपने अपने ठाकुर जी का प्रसाद खाए तब तो प्रसाद ले कर आओ, बोला प्रसाद प्रसाद तो है नहीं, तो पत्नी पूछे तो प्रसाद का करता थोड़ा लाओ, वो तो घर में देखा थोड़ा खा लिए खाली क्या सब खाना ना क्यों नहीं बता तो कुछ खाना क्या बता नहीं कुछ दे दिया क्या 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 पूछे उसको उसको पूछे कि लोग प्रसाद था ना प्रसाद क्या तो जाते हैं वो ना होगा सब का सब खा गया पागल सब खा गया हाँ सब खा गया श्रेष्ठ दोनों पति पत्नी आश्चर्य कर रहे थे सब खा गया। अरे अभी तक हम कई साल से पूजा करते आ रहे हैं डेली दो बार भोग लगाते हैं अरे एक भाग तो नहीं खाए इतना बड़ा ते थाली खा गया सारे ये भी नहीं बचा हमने सब खा लो विश्वास नहीं हुआ लेकिन सोचने लगे मुझे लड़का तो मेरे से कोई झूठ नहीं बोलता मैं जानता हूँ बड़े सकून युक्त है आज मेरे से इसे क्यों बहुत बोलता ये तो विश्वास जो नहीं है इतना लंबा तो लड़ो खा गए ठाकुर जी खा गए। बोले देखो रघु झूठ मत बोलो सच बोलो सच क्या बोलो खा गया खा गया वो सच क्या मेरे लिए नहीं दिया सब्जेक्ट की तो के था और उनके पत्नी पूछे ना मेरे था पर के दिया था हम को मैं क्या बोले तो बोला था ये कर वो तो मेरा संभव प्रतीत होना हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है जब ऐसा बोले काल देती सच में क्या खाना था ये वो खाना था ना कुछ तो बोलो बेटा रखो देखो काल भी मुझे जाना है बोला अच्छा आज भी करूँगा सर तो आज भी हम कोई तुम्हें से खाली से जाकर लोगों देखो आज और उनको नौकरी में जाऊंगा नहीं आज सीख कर करूंगा देखूंगा मेरे से झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल क्या करना है इन्वेस्टिगेशन करना है तो उन्हें सीख कर रहे उस बालक को तो पता नहीं लेकिन सर्वांतर जामी तो पता है आज क्या होने वाला है और जैसे पूजा होती है यहाँ तक कर लिए सब करने के बाद थाला ला कर भोग लगाने के बाद तो आज तो नहीं ना कि वो जानते हैं मुझे इधर मुख में बैठा है लेकिन तेरे लिए मैं आ गया उनके लिए थोड़ी और वो उनको तो पता नहीं कि पिताजी बैठे करके सीख करते हैं वो तो बोल रहा है कि कल खाया आज क्यों नहीं खाया खाओ खाओ पीछे पड़ गया और वही रोना हट करना फिर सुख इतना रोना हटकना देखकर ठाकुर जी को फिर आपने नियम फिर तोड़ना पड़ा सारे नियम तोड़ करके फिर उतरना पड़ा जितने भी ठाकुर जी को पता है आज मुझे जाना नहीं चाहिए लेकिन क्या करो बालक नहीं मानता बाल हट के सामने ठाकुर हट भी नीचा हो जाता है किंतु एक तो बालक दूसरे प्रेमी भक्त है क्या करेंगे बस है उनका बस नहीं चलता हरि का सर्वशक्तिमान का शक्ति खत्म उनके सामने चुपचाप उतर के आ गए आ करके लड्डू एक लेकर खा दे दूसरा लड्डू देख रहा हूं खाओ दूसरे लड्डू लेकर जा रहे हैं मुकुंदर दरवाजा खोलकर देख लिया तो तुरंत खाते खाते हाथ में लड्डू लिए थे और मुकुंदर को देखकर भाई जैसे जैसे हो गया और जल्दी से जाकर लड्डू में बैठ जाए इतने जल्दी नहीं कर पाए वहीं के वहीं विग्रह हो गए और जो विग्रह खड़े थे अब तो आकर के बैठ कर खा रहे हैं खाते खाते दरवाजा खोल गया तो वहीं के वहीं विग्रह हो गए वहीं से गोपाल विग्रह तो बोलते ना लड्डू गोपाल जो रूप देखते हैं लड्डू गोपाल का होना हो वो परंपरा वहीं से शुरू हुआ है वहीं से शुरू हुआ परंपरा आज से लगभग 500-550 साल पहले की बात है वहीं से शुरू हुआ वही शिशु रघुनंदन ने कृष्ण भगवान को लड्डू खिला दिया और खाते खाते पकड़ में आए तो वहीं पे खाते खाते वहीं विग्रह बन गए वहीं धातु मूर्ति बन गए क्योंकि वही आधा लड्डू हाथ में है आधा खाए हुए मुंह में भी है हाथ में भी है वही विग्रह इसी को उस विग्रह को लग्न मुकुंद ने देखे देख के बोले अल्टर तो खाली ठाकुर जी हम नीचे आकर ये गोपाल विग्रह लड्डू गोपाल क्योंकि जो हम सोचते हैं आजकल तो भारतवर्ष घर घर में गोपाल लेकर घूम रहे हैं लोग कर रहे हैं सब तो वो हम सोचते हैं कि हम तो वात्सल्य रस है पुष्टि मार्ग में जैसे वात्सल्य भाव में वात्सल्य से भगवान की सेवा करते हैं लेकिन पुष्टि मार्ग में गोपाल पूजा थोड़ी करते हैं उनका मंत्र क्या है श्री कृष्ण शरणं मम जिसको श्री कृष्ण शरणं बोलेंगे तो हम बेटा कैसे मानेंगे बेटा के शरण में पिता दे जाएगा ना फिर बेटा को लेकर शरण में ये नहीं तो ये जो लड्डू गोपाल की सेवा हमारा परंपरा से दुनिया को दिखाया गया ये वात्सल्य रस नहीं सख्य रस है रघुनंदन ने हमको अपना दोस्त मान सखा माना तो मैं भी बचा तू भी बचा मैं खाऊ तुम क्यों तो फ्रेंडशिप है वात्सल्य नहीं है वात्सल्य नहीं वात्सल्य रूप में पुष्टि मार्ग में श्री नाथ जी को पूजा करते हैं नाथ से ने गिरिवरधारी छोटा बालक जाकर के पर्वत उठा दिए सारे पिता माता और अगले सब देखने को उनका हाथ धुलता होगा इतने बड़े पत्थर पहाड़ उठा कर खड़ा है देख रहे हैं अद्भुत कर्म लेकिन मानते हैं बच्चा ये वात्सल्य भाव उनको सपोर्ट करने के लिए कोई लाठी लगा देता कोई हाथ लगा देता थक गया होगा हम थोड़ा सपोर्ट कर लें उसको तो लेकिन ये जो गोपाल रघुनंदन ने किए ये सब के रस के अंतर्गत उन्होंने ठाकुर जी को अंतर से उतार करके हाथ में लड्डू देकर को विग्रह कर दिया तो मुकुंद देख करके वही खड़े खड़े रोने लगे बोले मैं मेरे पितृ पितृव्य परंपरा से इस विग्रह को न जाने कितने साल से पूजा करता मैं इसी शरीर बुद्धि से कितनी बार भोग लगा पूजा किया एक दिन दिन से अगर हम जो भी ग्रह करते पूजा करते हैं ग्रंथ से ग्रहण है, लेकिन वो विग्रह नहीं है, लेकिन यही से विग्रह बना कर पूजा करते हैं रघुनंदन विग्रह नहीं रहा। तो प्रतिवर्ष की भांति रघुनंदन परिवार सब खंडवासी वैष्णव समझाते थे रथयात्रा के समय पूरी। तो एक बार जब पूरी पहुंचे मुकुंद हो गया है 8-10 साल में, तो महाप्रभु पूछने लगे सभी का सामान सब भक्त लोग जो मिलन होते हैं उसे मुकुंद उनके पास में उनकी पत्नी उनके बेटा उनके भाई से बैठा। बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप दोनों में अभिनंदन मुकुंद दोनों बैठे हैं, आप दोनों में कौन बाप है कौन बेटा है कौन पिता कौन पुत्र मेरे संशय रहता है। सारे दिन मिल गए ये 8 साल का लड़का है ये 58 साल के बूढ़ा है महाप्रभु क्या देखता नहीं बोलते कौन बाप कौन बेटा है ये कोई किसी पूछते हैं ये बड़ा आश्चर्य बात है। मुकुंद खड़े होकर हाथ जोड़ते प्रभु बात आपने सही कही आप जानते हैं इसलिए सत्य बात तो ये है ये हमारे पिता है ये हमारा पुत्र है। सब आश्चर्य होकर बैठे महाप्रभु जैसे पूछते हैं किसी कहते क्या बात हो गया उसको सब या इसे किस तरह हो। तो महाप्रभु कहते हैं मुकुंद आप सत्य बात जहां है ते कृष्ण भक्ति सही पिता है सही गुरु है। कृष्ण भक्ति जहां से सीखना मिलता है जिससे शिक्षा प्राप्त करते हैं कृष्ण भक्ति का वही आपके पिता वही आपके गुरु वही आपके मार्गदर्शक है ना। बिल्कुल मैं मेरा बाप 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 दादा तुम्हें कोई कितने पूजा कर रहे थे ऐसा पूजा जो करके खिला के बताया विग्रह को बदला दिया उन्होंने हमारा अल्टर ठाकुर पर ठाकुर बात पड़ता दिया उनका भक्ति को प्रभाव ऐसा तो हम उन्हीं से सीखे प्रभाव में पिता। तो सभी भक्तों के सामने हमको प्रमाणित किए कि चाहे भक्ति के लिए कोई वयस कोई जाति कोई धर्म कुछ आवश्यकता नहीं है। तो ये उनके पुत्र रघुनंदन को उनके पिता के रूप में प्रमाणित कर दिए सबके सामने और वो भी माना रहा है कि कृष्ण भक्ति से जिससे कृष्ण भक्ति उनसे मैंने सीखा मैं पुत्र नहीं कर पाया उन्होंने कराया। तो इसे रघुनंदन जिन्होंने ठाकुर जी को उतार करके क्या उनके भक्ति का प्रभाव था कैसा था क्योंकि बहुत सरल थे वो निष्कपट थे भगवान प्रसन्न होते हैं निष्कपटता से और सरलता से ऐसे कोई उनको पुकारे तो आ जाते हैं। लेकिन जब तक हम मानेंगे नहीं तो विग्रह है। आजकल तो मैं देखता हूं अनेक लोग मिलते हैं हमसे और घर में विग्रह रखते हैं और कैसे पूजा करते हैं पता नहीं भगवान जाने वो विग्रह जाने हो जाने जब पूजा वगैरह करते हैं कभी कभी लगाते हैं बना है आपका घर में कोई विग्रह का कौन बन कर कहा गया अभी सात आठ दिन के दौरान घर जाऊंगा नहीं विग्रह क्या कर हाँ है घर में अच्छा तू भगवान की सेवा कर रहा ठाकुर की सेवा कर रहा जब विग्रह तू तारा वाला क्या गया और यहाँ के बनवा लू ना बात है। अगर आपके बेटा होगा लड़का होगा 5-7 साल का 6 साल का आप कहीं जाना है बुलाओ उसको घर में बैठा कर पढ़ लो तो वहां से चला जाएगा जाएंगे क्या सोचिए। कई बाई चांस लड़का गया है परीक्षा देने के लिए अकेला छोड़ कर आया कितनी बार फोन करता है क्या चल रहा है क्या खा रहा है क्या देख रहा है कितनी बार पता करते हैं घंटों घंटों में खबर ले रहे हैं और उनको बैठा कर मतलब उनको अपना नहीं मानते हैं अभी संबंध हुआ ही नहीं वो तो विग्रह है पड़ता। तो क्यों आप खाना खाएंगे उनके साथ संबंध रखेगा तब तो खाएंगे उनके साथ चाहे पिता हो चाहे मित्र हो चाहे पुत्र हो किसी के संबंध से अगर संबंधित होंगे वो ऐसा व्यवहार करेंगे तब तो आप तो बिल्कुल सेंट पर्सन मानते हो तो पत्थर के विग्रह है मूर्ति है बोलते सब करने के लिए आपका तुम कर देता हूं बस थोड़ा पुण्य मिल जाएगा इसको तो फिर क्यों खाएंगे लेकिन नहीं वो पत्थर इस प्रकार संबंध से, इस प्रकार भाव से जो उनको सेवा करेगा, जो उनके साथ व्यवहार करेगा, तो भगवान तुम्हें प्रतिज्ञा वचन है, जे तथा मां प्रपद्यन्ते आम सती भजामि अहम्। जो मुझे जैसा समझेगा मैं भी उनको ऐसा ही समझूंगा। तो बालक प्रभु नंदन उनको ऐसा क्या तो कैसे व्यवहार जाए किसी भी रस से, किसी भी रस से संबंध। तो महाजी तो यहां तक कहते हैं यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य गुरु गौर वात्सल्य। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य गुरु गौर सभ्य भावे सचिंत तस्य सदृशी तन्मा परेते गोविंद मादि गुरु संत महंता। शुरू करते हैं कहां से, जम काम क्रोध, चाहे काम के मारे हो चाहे क्रोध, भगवान से गुस्सा करो तो झगड़ा करो, वो भी तैयार झगड़ा, वो ये भी क्रस है। हाँ, अगर किसी के साथ आप झगड़ा करना चाहते हो, हम कलयुग लोग हमसे कड़ा प्रिय है, तो उनके साथ कड़ा भी करो ना, कोई पसंद करे चलो, मुझे तो मानता है। एक सत्य घटना है मैं बता रहा हूं, आप सब भक्तों के नाम सुने होंगे, महाप्रभु जब पुरी में रहते थे तो उनका जब भाव उदय होता था तो सब दामोदर और रामानंद राय उनको पद गा कर सुना रहे थे, भागवत से रामानंद राय गाते थे। और सर्व दामोदर एक दो भक्त कवि हैं जिसका नाम है विद्यापति और चंडीदास, उनके पद गाकर सुनाते महाप्रभु शांत होते थे इस पद को सुनकर। तो इनमें से एक मैथिली कवि थे जिनका नाम था विद्यापति, बिहार के मिथिला के थे, और एक बंगाल के थे कवि जिनका नाम था चंडीदास। नाम उनका चंडीदास लेकिन उनका भजन कृष्ण कैसे सुनेंगे, आपको मन में थोड़ा शंका उठता है, कोई प्रश्न किए नहीं हो, नाम जैसा काम ही ऐसा नाम, चंडीदास ही थे वो। उनके ऐसे एक विनती है कि बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे दोनों, और जो चंडीदास थे ये बड़े लड़का थे, उनका तो प्रकांड शाक्त भक्त थे, प्रतिदिन चंडी पाठ करते थे, उनका नियम डेली सप्तशती चंडी पाठ करना, दुर्गा जी को उपासना करना, और उनके छोटे भाई को कृष्ण उपासक थे, दोनों भाई को प्रकार। तो पिताजी गुजर जाने के बाद में ये बड़े भाई अकेले, दोनों का हमेशा झगड़ा होता क्योंकि उनके मध्य कृष्ण में होते उनका भक्त साक्त है, ये वैष्णव है, वैष्णव लोग तो इसी दरिद्र होते हैं बेचारे, सहनशील होते हैं, उनको नहीं सहन। तो पिताजी चले जाने के बाद में उनको मार पीट कर सब हत्या में घड़ा था, अगर मेरे देवी की पूजा करेगा तो सही, नहीं तो नहीं तुझे कुछ नहीं दूंगा। वो बेचारे सहनशील तर नाम सोचे तल कर चुपचाप बैठ ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत मांग थे उधर का एक कमरा दे रहने के, वो दरिद्र होकर ही रहते, एक फूल पेड़ भी नहीं था उनके पास जो एक फूल तोड़ कर ला करके ठाकुर जी के चरण में दे दे। एक ही अंतर था ठाकुर बाड़ी के, उसको विवाह नहीं किया, ठाकुर बाड़ी में एस पे उठकर जाते थे वैष्णव, तो सुबह उठते ना जल्दी जल्दी उठकर जाते थे, तुलसी पत्ता है कहीं से ले जाते थे, जल देकर प्रणाम करते थे, प्रभु रो रो करके मेरे पास भूल भी नहीं आपको देने के लिए, धूप अगर कर पाती छोड़ क्या सेवा करूं, मैं ही उनका भाई हूँ लेकिन सारे संपत्ति हत्या लेकर बैठा कर देता नहीं, झगड़ा करता मेरे से, और आपकी कृपा से जो है वही देकर प्रणाम भर करता हूँ, आपको स्वीकार कीजिए। वो पूजा करके आ जाते हैं तब शाक्त जो देवी भक्त है वो तो 8 बजे उठते हैं, 8 बजे उठ करके चाय वाय पी करके सुना रूप करके सब चंडी पाठ करने का करते, उनका पूजा के बाद उनका पूजा शुरू होता, हो जाता है थकरवट में वो आ जाते हो जाएंगे, थकरवट में जाकर फिर उनका पूजा शुरू करेंगे, वो तो बढ़िया बढ़िया फूल तो रब के चम के आते, दास दासी को प्रभा कर सब फूल पर लाएंगे, ला करके वो ऐसे हिट था कृष्ण को देगा नहीं, एक ही अंतर है यहाँ पे कृष्ण है यहाँ से देवी है दुर्गा जी, दोनों पास पास समेत है, सारे फूल सारे वस्तु दुर्गा जी को चढ़ाएगा। एक दिन ऐसा था पता नहीं फूल फूल देने के बाद वो पूजा करता था, तो चंडी पाठ शुरू किया तो एक बढ़िया सुंदर सुगंधित धूप लगाया, धूप लगाया, धूप लगा करके इसे घुमा करके रख दिया और पाठ करने लगा, देखा कि हवा चलने लगा तो धूप के जो धुआं है वो जाता था कृष्ण के पास, वहां नहीं जाता था, तो बार बार उसको देखता था हाथी चलता क्यों ऐसा करता, लेकिन क्या करें, मन तो वायरस है तो इसके उत्तर में जा रहा है। इतने गुस्सा हो गया, आपने किताब को फेंक रख दिया, जा करके रुई लेकर आया, ला करके किसी के नाक में फंसा विग्रह टूट कर गिर पड़ेगा। और कोई भक्त है अगर कहता कि मैं इतने बड़ा हूं, ये हूं, से हूं, कुछ करता होगा और जाकर अभिराम ठाकुर को नाम कर दे, अगर सच्चाई नहीं तो तुरंत मर जाएगा। एक सेकंड तो कई को मार दिए। नित्यानंद प्रभु के 8 लड़के को मार दिए सख्या नित्यानंद प्रभु के पुत्र जाते थे, पुत्र हुआ शक्ति उपलब्ध जाएंगे प्रणाम कर दे खत्म। सब दुनिया जानते हैं किसी प्रणाम कर दे तो क्या तो सारे दुनिया में आवाज डर गया कि रघुनंदन इतने बड़े भक्त है, ऐसे भक्त जो खिलाया ऐसे दुनिया में बिल्कुल डर गया था। तो अभिराम ठाकुर सुने अच्छा सिद्धन में ऐसा है कि लड़का हुआ है उतना का लड़का हो इसे बड़ा भक्त है बोलता कि भगवान ऐसा चलो मैं जाता हूँ। तो आए उन्होंने उनके सिद्धन लाए आ करके और खबर मिला मुकुंद को कि अभिराम गोसाई आ रहे हैं खंडवासी सिकंद आ रहे हैं बीच में वो होकर आए तो खबर पहुंच गई तो अभिराम जा रहे पैदल में जा रहे हैं कि किस लिए जा रहे हैं बच्चे हम जा रहा हूँ मिलकर आने के लिए मुकुंद से मिलूंगा आपके लड़का को देखूंगा बहुत लोग कैसे कर रहे हैं कैसा हम कर देते हैं अभिराम तो मुकुंद खबर पहुंच गया मुकुंद डर के बोले अरे बाप रे बाप अभिराम गोसाई आ रहे हो ना प्रणाम कर दे मेरा एक ही लड़का है मर जाएगा कन्नर जैसा सुंदर लड़का है तो इसलिए क्या करे डर के मारे मना भी तो नहीं कर सकते हैं। अरे अभी गांव में फंस लो अब आने वाले वो छुट्टी लेकर घर में आए घर में आ करके और लड़का को ले देखो तुम घर बैठो बाहर से कबाड़ बंद बाहर से कबाड़ बंद करके तो बाहर बारने में बैठे रहे। तो अभिराम ठाकुर ढूंढ ढूंढ जाए आकर के पता कि यही मुकुंद में पड़े मुकुंद का कर यही क्या कुछ है मुकुंद हाँ मैं मुकुंद आप अभिराम दोनों दोनों को प्रणाम किए क्या बात है किसे आता हूँ तो उन्होंने सुना कि आपके लड़का अच्छा लड़का अच्छा बात है ना कहीं गया है अभी है नहीं बिल्कुल बाहर जानते कि शायद प्रणाम कर देंगे बता इसलिए भी तुम आया जितने पूछे नहीं भाई थोड़ा मैं दर्शन कर नहीं तो करना तो विशेष काम करना किसी को आड़ मुंह काम ही नहीं करना आप तो उनसे बातचीत करके इसे घर के अंदर घुसने नहीं दिए इधर रघुनंदन लाल स्वभाव के आकर पीछे दरवाजा खोल कर निकल गया निकल गए निकल के गांव से थोड़ी दूर जा करके एक गंगा जी के किनारे एक बगीचा है बड़ा बड़े बड़े बड़का और सुखा है तो वहां बच्चों के साथ जाकर यहाँ खेल रहा है तो हताश होकर का विराम ठाकुर वापस आ रहा फिर मैं आया तो मिलने के लिए मुकुंद और राज चतुर पड़ गया छिपा दिया मैं समझ गया छिपाया उन्होंने अब क्या करो बैठ नहीं करने दिया जा रहे थे वापस जाते जहाँ से देखे कि 4-5 लड़के खेल रहे हैं एक लड़का उनके अंदर तो इतनी सुंदर दिखाई पड़ रहा है इतने सुंदर दिखाई पड़ रहा है कि उनके मन में आकर्षण हो रहा तो जाकर उनके पास पहुंचे देखे देखने के इतने उनको अच्छा लगा आकर्षित हुए एक तरफ देखने लगे लड़का तो आकर के पूछा लड़का तो बाबा जी क्या बात है आप देख रहे किसको चाहिए किसको ढूंढ रहे बोले बेटा तेरा नाम क्या है तेरा नाम रघुनंदन हाँ मैं रघुनंदन तुम्हारा पिता हाँ मैं मुकुंद के पुत्र हूँ मेरे पिताजी मुकुंद है मैं उनका पुत्र हूँ अच्छा बहुत बोले थे पढ़ा पता नहीं पिताजी मुझे बाहर जाने नहीं थी मैं तो पीछे से आ गया वही रघुनंदन है उनका पुत्र हाँ तो कुछ विचार किए सीधा दल में प्रणाम लगा दिए तो उनको पूछा मतलब बाबा जी मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो तो भूल झाड़ दी होगी तब उठ करके उनको पहले समझो, नहीं तो मेरे प्राण को नुकसान नहीं कर सकता। अब समझ गया तुमको, अब मान लिया। तो उनको गोद में बैठा करके दौड़ करके आए रघुनंदन, मुकुंदर तुमने क्यों छिपा रहा था? टेस्टेड होके छोड़ दिया वो तेरे लड़का, तेरे लड़का नहीं तो सखा कर प्राण को। तो इसे रघुनंदन ठाकुर ने जो बचपन से ही तो भगवान पहले से बोली देते उनके इससे पहले, तो उन्होंने विग्रह से धर्म स्वीकार किए और अनेक दिन तक खंड में रहकर के विग्रह उपासना की। अनेक उनका भक्ति जब मुकुंदर के अंतर्धान होने के बाद में और उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिए थे उनके चाचा जी नरहरि ठाकुर से। नरहरि ठाकुर के शिष्य थे, नरहरि ठाकुर की सेवा करते थे। एक बार नरहरि ठाकुर की जब समाधि चले गए, नरहरि ठाकुर अंतर्धान होने के बाद में उनकी समाधि दिए, समाधि के बाद यही लोग कभी कभी कहते हैं कि समाधि तो समाधि, कई लोग बड़े बड़े महापुरुष बोलते हैं मर जाने के बाद शरीर में क्या है, फेंक दो उसको, इतने पैसा खर्च करके समाधि क्यों बनाना चाहिए, बेकार है ये सब तो, तब व्यय कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में रघुनंदन नरहरि के चरित्र में देखना मिलता है। छोटा सा समाधि बनाया गया रघुनंदन ठाकुर खंड में, आज भी समाधि है। तो गुरु जी ने बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, कितना कितना करके मुझे समाधि दे दो। वो जीते जी समाधि ले लिए थे नरहरि ठाकुर। बोले कि मेरा जो तिथि है उस दिन भी भोग लगा ना तुम्हें, तू ही भोग लगा ना जब तक तू है। तो नरहरि ठाकुर के जो श्राद्ध दिवि था एक साल के बाद में, तो उन्हें बोले मैं गुरु जी का भोग लगाऊंगा, भोग बनाओ। कई लोग बुला इसको भोग राग बना करके समाधि के अंदर आप सारे भोग लग करके कितना जीव भोग लगाए, बाहर में बैठ करके अंदर करने भोग लगा। कोई चला गया कितनी देर हो रहे हो अंदर ध्यान में बैठे हैं रघुनंदन, कोई जाकर कितनी देर हो गई जाकर पता कीजिए, पता कीजिए तो देखा कि नरहरि ठाकुर समाधि से ऊपर उठ करके भोग खा रहे हैं एक साल के बाद। इसलिए यह मत समझिए कि कोई जो नित्य सिद्ध वैष्णव होते हैं उनके समाधि ऐसा ऐसा नहीं, और समाधि में हूबहू बैठे हैं, जो उनको उनके भाव से कोई दे वो स्वीकार भी करते हैं, बैठ कर खा रहे थे खाई पड़ा। अभिनंदन उनको देंगे तो किसी को, जब ठाकुर जी को खिलाएंगे तो कुछ भी किसी खिलाएंगे, समाधि से उठकर खाना पड़ा एक साथ। तो ऐसा प्रभाव था श्री अभिनंदन ठाकुर के, तो आज उनके नित्य लीला प्रदर्शन की स्थिति है, तिथि है। तो ऐसे ऐसे महाभक्त प्रेमी भक्त भाई भक्त भगवान अंश से जो भक्त हैं उनके आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि एक विशेष दिन है हमारे लिए, एक सुवर्ण सुयोग की विशेष अपॉर्चुनिटी है, जिस तिथि के दिन में हम उन भक्तों की उनका मन थोड़ा उदार होता है आज की तिथि में, तो उनकी प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जो सेवा के भाव था, ठाकुर जी के प्रति उनके जो संबंध था, जिस प्रकार का सर्विस एटीट्यूड था, इस एटीट्यूड से इस सेवा भाव से एक करोड़वां हिस्सा उनके कृपा से हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्री रघुनंदन ठाकुर की जय। ताई हो।